नमस्कार दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे को मान्यता दिए हुए 8 साल हो जाएंगे। आपको बता दूं कि ये दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है और उन भाषा विशेषज्ञों के कार्यों को मान्यता देता है जो कि सांस्कृतिक समझ, जुड़ाव और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स का मानना है कि कार्यबल की सुरक्षा और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे में SBS हिंदी के साथ इस खास अवसर पर जुड़ी शिवाली वर्मा। शिवाली एक प्रमाणित नाटी ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण सरकारी, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों के अनुवाद में 1 दशक से भी ज्यादा समय का कार्य किया है। तो शिवाली, सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। शिवाली, मैं जानना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया जैसे विविध यानी डाइवर्स देश में ट्रांसलेटर्स क्या भूमिका निभाते हैं?
देखिए, जब मैंने अपना यह काम शुरू किया एक अनुवादक के रूप में, तो मेरा लक्ष्य यहाँ पर ये रहा था कि मैं भाषा की बाधाओं को दूर करके लोगों को जरूरी जानकारी उन तक पहुँच दिलवा सकूँ उनको। तो ज़्यादातर जो अनुवादक होते हैं उनका काम ये रहता है कि वे लिखित दस्तावेजों का अनुवाद करते हैं। वो दस्तावेज हो सकते हैं सरकारी दस्तावेज, कुछ कानून संबंधी, कुछ स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी या फिर सामाजिक सेवाओं से जुड़े दस्तावेज। तो वो ताकि बाकी लोग उनको अच्छे से समझ पाए, उनको अच्छे से जानकारी मिल सके और वो किसी भी जरूरी जानकारी से वंचित न रह पाए। तो अनुवाद के जरिए उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है उस सब जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकने का। तो इससे फिर वो कोई भी सरकारी योजनाएं हो, कुछ स्वास्थ्य निर्देश हो, उनका अच्छे तरीके से वे लाभ उठा पाते हैं और समाज में उनका समावेश भी बढ़ता है।
अगर हम जटिल यानी कॉम्प्लेक्स या सांस्कृतिक रूप से जो संवेदनशील पाठ होते हैं उनके अनुवाद की बात करें तो वो आप कैसे करती हैं? साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप किसी ऐसे कठिन अनुवाद का उदाहरण साझा कर सकती हैं जिस पर आपने काम किया हो?
जी हाँ, जैसे मैंने अभी कहा, बहुत तरह के दस्तावेज रहते हैं, सरकारी दस्तावेज रहते हैं, कुछ वेबसाइट्स ट्रांसलेट की जाती हैं, कुछ कानूनी दस्तावेज हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, कुछ तकनीकों से संबंधित भी दस्तावेज रहते हैं। तो हाँ, कई बार उनमें जटिलताएं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, कुछ जटिलताएं रहती हैं क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हो पाते हैं। तो कोशिश रहती है जब इस तरह के कोई भी जटिल या सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील अगर अनुवाद करने हो तो पहले तो उन सब के विषय को समझा जाए, संदर्भों को समझा जाए और फिर अनुवाद, क्योंकि अनुवाद सिर्फ शब्दों का नहीं होता, इसमें संदेश की भावना को भी आप अनुवाद करते हैं। आपको सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखना होता है, पाठकों की सोच को ध्यान में रखना होता है और आपको यह सोचना होता है कि आप ये किसके लिए अनुवाद कर रहे हैं। तो कई बार अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उस संबंधित विषय के विशेषज्ञों से बात करने की कोशिश करती हूँ, कुछ अपनी रिसर्च की जाती है ताकि जो मेरा अनुवाद है वो सटीक हो, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, उचित हो। तो इसलिए भाषा का और शब्दों का चयन भी उसी तरह से किया जाता है जो सहज भी हो, जो सम्मानजनक हो, जो प्रभावी हो।
शिवाली, ऑस्ट्रेलिया में अनुवाद कार्य को कैसे नियंत्रित किया जाता है?
जी, यहाँ पर है नाटी, जो है नेशनल एक्रेडिटेशन अथॉरिटी फॉर ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स। तो ये एक प्रमुख संस्था है जिसको भी अनुवादक या दुभाषिया बनना होता है तो उनका प्रमाणन यही संस्था करती है। और ना सिर्फ ये प्रमाणन करती है, क्योंकि हमारा जो नाटी का प्रमाणन होता है वो 3 साल के लिए वैध होता है, तो ये नवीनीकरण का भी काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी ध्यान देती है, क्योंकि जब आपको नवीनीकरण करवाना होता है तो आपको कुछ ना कुछ निश्चित संख्या के शब्दों का अनुवाद किया होना जरूरी है और कुछ जैसे कार्यशालाएं कह लें या प्रशिक्षण कार्यक्रम कह लें, उनमें भाग लेना शामिल होता है। और एक और संस्था है जिसे कहते हैं ऑजिट, वो है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स। ऑजिट का काम क्या रहता है, यह सिर्फ पेशेवर विकास या प्रशिक्षण ही प्रदान नहीं करता, अनुवादकों के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आचार संहिता, उसका भी निर्धारण करता है।
जी
तो उस आचार संहिता के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो लोग भी अनुवादक की तरह काम कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से, गोपनीयता को बनाए रखते हुए, निष्पक्षता से और व्यावसायिकता को बनाए रखते हुए काम कर रहे हों।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने से इस क्षेत्र में अब क्या दिक्कतें हैं और क्या फायदे आ सकते हैं?
बिल्कुल, आजकल AI तो हर क्षेत्र में है, बहुत अच्छा टूल है, तेज है, शुरुआती समझ के लिए उपयोगी भी है। तो पर अगर हम बात करें भाव की, संदर्भ की और संस्कृति की, तो अवश्य इंसानी सोच की जगह तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अनुवाद फिर सिर्फ शब्दों को बदलना नहीं होता बल्कि उस भावना को सही तरह से प्रस्तुत करना होता है। तो कुछ फायदे हैं AI के, जैसे अनुवाद की गति बढ़ी है। अब कई बार जैसे मैं गूगल ट्रांसलेट अगर मुझे इस्तेमाल करना होता है तो सिर्फ ये कि शुरुआती ड्राफ्ट के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अंतिम अनुवाद हमेशा आप मानव समीक्षा के साथ और संपादन के बाद ही किया जाता है, क्योंकि वो उसके भाव और शैली को शायद नहीं पकड़ पाए। तो सिर्फ इसको एक सहायक उपकरण की तरह आप इस्तेमाल कर पाते हैं, ये एक अनुवादक की जगह तो नहीं ले सकता।
शिवाली, आपका आज SBS हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद।
SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।